ये बेहद विश्व का ड्रामा, यद्यपि इसे कई बार हमने देखा है, कई बार खेला है, लेकिन फिर भी मन में जैसे जैसे हम इसके अंतिम चरण की ओर जा रहे हैं, क्लाइमेक्स की ओर जा रहे हैं, वैसे वैसे मन में भाव भी पैदा होते हैं कि अंतिम स्थितियां, परिस्थितियां कैसी होंगी, क्या होंगी, अंतिम पेपर कैसे होंगे, हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए, कैसे हाहाकार होगा, कैसे जय जयकार होगा, विजय किसकी होगी। यद्यपि पता है कि हम ही हीरो एक्टर हैं, विजय हमारी ही होगी, फिर भी एक जिज्ञासा का भाव जरूर होता है कि कैसे होगा, कब होगा, आदि आदि इत्यादि। इसीलिए अब क्या होगा, पार्ट फोर में हम हैं। पहले तीन भागों में भी अलग अलग चर्चाएं, जो मन में जिज्ञासा के भाव आपके थे, उनका उत्तर हमने आदरणीय श्री भाई जी से प्राप्त किया। आज भी हम सब सौभाग्यशाली हैं कि भ्राता जी हमेशा हमारे साथ होते हैं, जिन्होंने साकार बाबा को देखा, अव्यक्त बाबा की बहुत गहन पालना ली, और साथ ही साकार अव्यक्त मुरलियों के साथ साथ अव्यक्त संदेशों को भी गहराई से जिन्होंने अध्ययन किया है, जिसका अनुभव किया है, मैं कहूंगा जिया है, तो उनके अनुभवों से हमें जब ये उत्तर प्राप्त होते हैं तो हमें भी एक पुरुषार्थ का सुंदर मार्ग प्राप्त होता है। तो सुंदर जय जयकार की ओर हम बढ़ रहे हैं, हाहाकार भी होगा, लेकिन इस जय जयकार का सुंदर रूप जो हो वहीं से हम शुरुआत करना चाहेंगे। आइए अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी सभी की ओर से दिल से बहुत बहुत स्वागत है।
थैंक यू।
तो सुंदर जय जयकार की ओर भ्राता जी हम सब बढ़ रहे हैं, और एक सुंदर स्वरूप होगा जैसा आप हमेशा कहते हैं। एक प्रश्न उठता है कि बाबा हमेशा कहते हैं कि अभी भी ऐसी एक स्थिति है कि ये भी अच्छा कर रहे हैं, ये भी अच्छा कर रहे हैं, ये भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन यही है, यही है, यही है, ये कैसे होगा और कब होगा।
बड़ी गहरी बात है। जब हम भी ये चर्चा कर रहे थे कि अब क्या होगा, तो थोड़ी घबराने वाली बात भी है, लेकिन कल हमारा बहुत सुनहरा होगा जब हमें ये पता चलता है, तो आज का कांटों भरा रहा रास्ता भी जरा सुखद होने लगता है
जी।
कोई बात नहीं, कांटों पे चलेंगे, कांटों को कुचल देंगे, रास्ता बन जाएगा और एक सुखद कल में हम प्रवेश करेंगे। तो वास्तव में भगवान के दो मुख्य कार्य होते हैं, एक वो नव सृष्टि का निर्माण करते हैं जिसे स्वर्ग कहते हैं, मनुष्यात्माओं को पावन बना देते हैं, पवित्र बना देते हैं, और जब बहुत आत्माएं पवित्र बन जाती हैं तो पवित्र दुनिया की स्थापना हो जाती है, तो अपवित्र दुनिया समाप्त होने लगती है। समाप्ति का खेल हम देख रहे हैं जिसमें सभी मनुष्य अपने कर्मों के हिसाब किताब को चुक तुक करते जा रहे हैं और करेंगे भी, क्योंकि बिना पावन बने कोई आत्मा घर यानी मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकती। लेकिन कल, उसके बाद का कल बहुत सुंदर है। ये भारत स्वर्णिम युग होगा। हमारे यहाँ गीत बजा करता है, भारत फिर भरपूर बनेगा।
बहुत अच्छे शब्द हैं।
कोई नहीं कमी होगी, धरती भी हीरो से भरी होगी, आकाश भी हीरो से भरा होगा। तो वास्तव में ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है जिसे सूक्ष्मता से समझना बहुत जरूरी है, और इसमें हमारी पवित्रता और हमारा योग बल क्या भूमिका निभाता है इसकी भी, जैसे बाबा कहते हैं तुम योग बल से राज स्थापित कर रहे हो, तो योग बल से राज की स्थापना और योग बल से राजाई पद प्राप्त होना ये कैसे होता है। तो ये भारत भगवान के शब्दों में तो ये है कि जैसे भगवान की महिमा अपरंपार है, ऐसे इस भारत की महिमा भी अपरंपार है। वास्तव में हमारा इतिहास भी गड़बड़ा गया, ऐसे आक्रमणकारी लोग आए जिन्होंने इतिहास में बहुत चेंजेस ला दिए। हम जो इतिहास पढ़ते हैं वो कोई सत्य नहीं है। हमारा अतीत तो अति सुंदर था, इतना ही लिखा है मौर्य काल, गुप्त काल, सुवर्ण काल, फलाने काल में ये था वो था। देखो घरों में दरवाजे भी नहीं होते, महलों में दरवाजे नहीं होते थे, तो बहुत सुंदर स्थिति थी हमारे भारत की, भरपूर था, प्रकृति संपूर्ण सुखद भरपूर थी यहाँ। तो इस दुनिया में रहने वाले हम सब जो अनेक अभाव में जीते हैं, जिनको अपने जीवन यापन के लिए भी क्या क्या करना पड़ता है, कष्ट हो, शरीर में रोग लगे हुए, संबंध में कड़वाहट बढ़ी हुई है, सब तरफ आनंद नहीं है कहीं, तो ऐसी दुनिया की कल्पना बहुत मुश्किल कर पाएगा। कैसा भी होगा क्या, वो तो इलेक्ट्रॉनिक्स के युग को देख के आनंदित है, वाह। अब बच्चों को तो पता ही नहीं कि इसके पहले भी कुछ युग था क्या, जब ये फोन नहीं थे, ये साधन नहीं,
वो तो ये सोचते हैं कि पहले लोग बंदर थे या पाषाण युग में थे,
अंधकार युग में थे, पाषाण युग में थे, बंदर थे, उन्हें पता ही नहीं कि देवता थे। अगर ये पता लग जाए कि देवता थे तो बंदरों से प्यार नहीं, देवत्वों से प्यार करेंगे।
जी जी जी,
तो वास्तव में एक सुंदर युग आ रहा है, इसलिए हमें ऐसी घबराहट या चिंता की बात नहीं कि क्या क्या हो रहा है, एक स्वर्णिम सवेरा आने वाला है।
जी जी जी, कुछ समय पहले भी बाबा ने अपने संदेश में ये बात कही थी बाबा जी कि लोगों में ये विचलन है कि कैसे होगा क्या होगा, उन सबको स्वर्ग की बात बताओ और साथ ही साथ एक कमेंट्री भी उस पे कराओ, बाबा ने ये बात कही थी। तो आपने सुंदर बात कही बाबा जी, हम हाहाकार की ओर भी जरूर आएंगे क्योंकि हमें तैयारी भी तो अपनी करनी है, लेकिन जो बात आपने छेड़ दी है कि कैसे हम योग बल से राज्य की स्थापना कर रहे हैं, तो हमारा योग कैसे एक राज्य सतयुग की स्थापना कर रहा है, कैसे ये लोकतंत्र राजतंत्र में योग से परिवर्तित होगा, बड़ा ही गुह्य है क्या?
बड़ी गुह्य बात है, क्योंकि राज चलते थे भारत में
जी,
अंग्रेजों के समय भी राजाएं होते थे, लेकिन उनके पास इतनी पावर तो नहीं थी, राज तो समाप्त हो गया, लोकतंत्र हमारे यहाँ आ गया, वो भी अच्छी बात है, लेकिन लोकतंत्र की कई खामियां हो गई, उसमें भी बुद्धिमान लोग समझदार लोग कम जाते हैं, ऐसे वैसे ज्यादा घुस गए
जी।
तो एक तरह से तंत्र जो हमारा राजतंत्र है ये थोड़ा विकृत सा हो गया है, हमारे कुछ नेता बहुत अच्छे हैं जो देश की सोचते हैं, नो डाउट प्रशंसनीय है उनका कार्य, परंतु सब तो ऐसे नहीं है। तो भगवान स्वयं आया है इस युग को बदलने के लिए, और उसने दो चीजें कर दी, पवित्र बनो योगी बनो, लाखों लोग पवित्र बन रहे हैं योगी बन रहे हैं। तो योग बल से क्या होता है, मनुष्य के अंदर देवत्व उभरता जाता है, जो देवकुल की महानात्माएं थी कभी सतयुग में, हम सब देवी देवता थे, वो देवत्व हमारे अंदर रहता है, अब वो दबा रहता है कलयुग के इफेक्ट में, अब वो योग बल से एक तो जागृत होता है। तो सर जैसे जैसे हम योग करते हैं तो आत्मा पावन बनती जाती है, उसकी इम्प्योरिटी, उसका दृष्टिकोण सब बदलता जाता है, उसकी भावनाएं श्रेष्ठ होती जाती है, जो देवत्व का एक रूप है, उसके संस्कार डिविनाइज होते जाते हैं, दैवी संस्कार बनते जाते हैं, और बस होगा यही कि जब करोड़ों लोग ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे तो उनके लिए फिर मौजूद चाहिए, वो तमोप्रधान लोगों के साथ तो रह ही नहीं पाएंगे। ये भगवान का प्लान है कि उनके लिए एक नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। तो योग के वाइब्रेशंस भी बहुत काम करेंगे, एक तो व्यक्तिगत रूप में राजयोगा, योग ये नहीं एक्सरसाइज वाला योग नहीं, वो तो योगा शुरू कर दिया लोगों ने, ठीक है स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन जब तक आत्मा पावन न बने तब तक भी संपूर्ण स्वस्थ वो नहीं हो सकती है। तो इस योग से वाइब्रेशंस बहुत अच्छे फैलते हैं, और उससे क्या हो रहा है, धीरे धीरे वातावरण बदलता जा रहा है, प्रकृति में भी ये प्योर वाइब्रेशंस जा रहे हैं, और ये स्पिरिचुअलिटी फैल रही है, और जल्दी वो समय आएगा जब हर व्यक्ति, जो कि उबता जा रहा है मनुष्य, अब धन से भी उब जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स के साधनों से भी उब जाएगा, ये जो खान पान गंदा हो गया ना तमो प्रधान, इससे भी उब जाएगा, कहेंगे तुम क्या जानवर खा रहे, जानवर खाते खाते बुद्धि भी जानवर जैसी खा, इस सब की रियलाइजेशन हो जाएगी मनुष्य को, ये होगा योग के वाइब्रेशन से, तो मनुष्य देवत्व की ओर चलेगा, और इस तरह धीरे धीरे ये युग बदल जाएगा, और योग के पावरफुल वाइब्रेशन से ही संपूर्ण परिवर्तन होता है। विनाश जिसे हम कहते हैं उसके पीछे भी योग की एक अपार शक्ति जो महादेव जी को दिखाया है, वो इस महाविनाश के निमित्त दिखाए हैं
जी जी।
उन्होंने डमरू बजाया या नृत्य किया,
अपना नेत्र भी खोला,
नेत्र भी खोल दिया, तीन चीजें विशेष दिखाती हैं
जी।
खुशी में डमरू बजाया, नृत्य किया और ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल गया। ये नेत्र ऐसा नहीं था जिससे कोई अग्नि निकलने लगी और विनाश होने लगा, ये ज्ञान का तीसरा नेत्र था है। तो एक अतिंद्रिय सुख का आभास होने लगा। तो ये सभी आत्माएं जो राजयोग के पथ पर चल रही हैं, जब अतिंद्रिय सुख में संपूर्ण रूप से आ जाएंगी, ज्ञान का तीसरा नेत्र पूरी तरह खुल जाएगा, मन में खुशी के डमरू बजने लगेंगे, तब ये महाकाल का कार्य प्रारंभ होगा। इस तरह योग बदलेगा
जी जी। मतलब योग बल इस रूप में कार्य करेगा कि इस ये परिवर्तन लाता चलेगा। अब योग की फिर जैसे आपने एक संपूर्ण व्याख्या की, तो वो स्थिति हमारी कब तक आएगी? क्या सबकी अलग अलग है या सामूहिक रूप से बहुत सारे शंकर तैयार हो जाएंगे तब ये डमरू बजने वाली?
देखिए, योग की स्थिति तो सबकी अलग अलग है। शास्त्रों में भी 11 रुद्र दिखाए हैं। तो ऐसी बहुत सारी आत्माएं महान योगी बन जाएगी, अतिंद्रिय सुखों में नृत्य करने लगेंगी। इस संसार में जो कुछ भी होगा उन्हें आभास होगा पहले से ही, ये सब कल्याणकारी हो रहा है। जो भी तोड़फोड़ होगी, प्राकृतिक प्रकोप होंगे, वो सब कल्याणकारी होंगे, उन्हें आता हुआ स्वर्णिम युग दिखाई देगा। तो योग तो सभी कर रहे हैं और सब अच्छा करते हैं, लेकिन इस योग बल से जिन्होंने एक तो संपूर्ण प्योरिटी को धारण कर लिया होगा और योग बल से कर्मेंद्रियों को शीतल करके अपनी बुद्धि को संपूर्ण रूप से डिविनाइज कर दिया होगा, जिनके संपूर्ण दुख समाप्त हो गए, जो ईश्वरीय खुशी में अलौकिक नशे में मस्त रहने लगे, वो हैं ये रुद्र तपस्वी
जी।
इनके द्वारा ये महाकार्य होगा।
बिल्कुल, हम सभी निश्चित रूप से जल्दी वहां तक अपनी पहुंचने की तैयारी करेंगे ताकि हमारा एक सुंदर सा जो अभ्यास है, पुरुषार्थ है, वो हमारे जीवन को वहां तक ले चले जहां हम पहुंचना चाहते हैं, और जल्द से जल्द ये जय जयकार की जो स्थिति है उस स्थिति को हम प्राप्त कर सकें, क्योंकि हमारी ये स्थिति ही मुझे लगता है कि वहां तक हम सबको पहुंचाएगी। भ्रत जी, बहुत सारे प्रश्न अब हमारे पास आए हुए हैं, अब क्या होगा को लेकर के। बाबा कहते हैं अभी के पुरुषार्थ के आधार पर ही भविष्य में पद की प्राप्ति होती है। तो मैं चाहूंगा एक एक लाइन में या बहुत ही सार में आप ये बताएं कि जो महाराजा महारानी का पद होगा उसका आधार क्या है?
एक तो जो भी सम्राट होता है, महाराजा होता है, वो मोस्ट पावरफुल होता है। कमजोर को बैठा दिया जाए तो कोई अटैक कर दे। तो योग बल से जो आत्माएं मास्टर ऑलमाइटी बन जाएंगी, लाइक ऑलमाइटी, वो विश्व महाराजा बनेगी। दूसरा, एक महाराजा को बहुत बुद्धिमान होना चाहिए। सतयुग में मंत्री आदि वजीर आदि होते नहीं, महाराजा ही महारानी ही बहुत बुद्धिमान है। तो राजयोग के बल से जब उसमें प्योरिटी मिक्स होती है तो डिवाइन बुद्धि प्राप्त होती रहती है मनुष्य को, उसमें ज्ञान रतन बढ़ते जाते हैं, उसकी विजडम निखरती जाती है, ऐसी आत्माएं विश्व के राज के अधिकारी बनती है। तीसरी चीज, एक राजा बहुत चरित्रवान होना चाहिए। इतिहास इस बात का साक्षी है, जो राजा व्यसनी हुए, स्वार्थी हुए, प्रजा पर ध्यान नहीं दिया, उनके राजवंश नष्ट हुए। तो राजा को, महाराजा को, सम्राट को बहुत चरित्रवान। और इसके साथ साथ एक और चीज, उन दिनों ये विश्व महाराजन जैसे परिवार के हेड होते हैं, कोई भी उनसे जाके आराम से मिल सकता है, कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं। तो ये संभाव, ये स्वभाव, ये जिसे वो पितर हो, पिता हो गए, बाकी सब उनकी संतान है, ये स्नेह का भाव
जी,
अब इनका ये रूप यहाँ निदान कर
दिखाई देगा।
तो जो लोग ऐसे अपने संस्कार बना लेते हैं, हैं, सच्चरित्र निर्माण कर लेते हैं, सद्गुणों से संपन्न हो जाते हैं, वो इस महान पद के अधिकारी होते हैं।
जी, पिछले मास हम मम्मा की बातें कर रहे थे, तो मम्मा की विशेषताओं में भी ये बात देखी बेटा जी, कभी भी मम्मा के लिए अपॉइंटमेंट वाला शब्द नहीं था, कोई भी कभी भी जाके मम्मा से मिल सकता था। बड़ी दादी के लिए भी हमने यही देखा था, और बाबा का एक महावाक्य भी इस पे था कि विश्व महाराजन अर्थात जिसको सभी अपना माने, चाहे वो दास हो प्रजा हो, लेकिन वो अपना ही मानेगा।
हाँ, छोटी सी बात ही देख ले, माँ बाप से मिलने के लिए कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत थोड़े पड़ती है। बच्चे जब चाहे गोद में कूद उठे।
जी जी जी, और अधिकार से कि नहीं हमारा अधिकार है, आप सब काम छोड़ो, हमसे पहले बात करो। हाँ। अच्छा पिता जी, इसी प्रकार राजा रानी बनने का, प्रजा व दास बनने का, इसका क्या आधार है? मतलब पुरुषार्थ तो हम अभी कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, लेकिन ये सारी जो कैटेगरी है वो बन जाते हैं, बात क्या है आधार?
भिन्न भिन्न जो संस्कार मनुष्य के अंदर पनपते हैं, कईयों में मांगने के संस्कार,
लेकिन सत्युग में तो होंगे नहीं मांगने
नहीं,
के
नहीं, यहाँ
यहाँ
मांगने के संस्कार हमेशा एक डिमांड बनी रहती है। समझ लें उनका पद नीचा है, महाराजा माना दाता, जिन्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए तो उन्हें सब कुछ प्राप्त हो जाता है, और जो है मांगने वाले उन्हें बहुत कम प्राप्त होता है। मांगने वाले को जैसे मिलता है थोड़ा, तो भगवान उन्हें भी सत्युग में थोड़ा ही देते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मांगने के संस्कार को समाप्त नहीं किया। जिन्होंने दूसरों की पालना का संस्कार धारण नहीं किया वो प्रजा बन जाते हैं। जो दूसरों के अधीन चलना, जिनके अंदर ये संस्कार है दूसरों के अधीन चलना, जिनके अंदर कमांडिंग नेचर या दूसरों के दिलों पे राज करने वाली बात नहीं होती, वो प्रजा में आ जाते हैं। तो वास्तव में बाबा ने जो रहस्य बताए हैं, दो रहस्य मैं खोल रहा हूँ। एक तो कहा जो जितना स्वराज्य अधिकारी बनेंगे वो उतना ही विश्वराज्य अधिकारी बनेंगे, एक तो बड़ी बात है। स्वराज को सब लोग जानते हैं जिन्होंने ज्ञान लिया, अपने पर राज करेंगे, अपने कर्मेंद्रियों पर राज करेंगे। दूसरा, बाबा ने कभी कहा है बहुत पहले, 50 साल 52 साल पहले, जैसे आजकल चुनाव होते हैं, जिसको ज्यादा वोट मिले वो चुना गया, तो जिस आत्मा को ज्यादा लोग दिल से वोट देंगे, यानी जिसके लिए बहुतों में दिल का सम्मान होगा, दूसरे शब्दों में जो बहुतों के दिल में बसे होंगे, वो महाराजा महारानी बनेंगे। अभी कुछ लोग ऐसे हैं भाई बड़े हैं, सम्मान देना ही पड़ेगा, डांट ना दे, प्यार करना, बहुत अच्छे हो, अब महिमा भी करनी पड़ेगी, लेकिन दिल में कौन बसा है वो बनेंगे विश्व महाराजा महारानी।
जी जी, वैसे ही जो ये दास और चंडाल बनने का कारण क्या है? क्या आप नहीं, इनका प्रश्न है कि भाई ये आधार क्या है, जैसे विश्व महाराजन राजा राजनी प्रजा दास
चंडाल, जो अपनी प्योरिटी को छोड़ देते हैं, ऐसे भी लाखों लोग हैं, कभी सभी तो चंडाल नहीं बनेंगे, कुछ लोग ऐसे हैं छोड़ने के बाद फिर आ गए, तो उनका अगर पुरुषार्थ अच्छा होता है तो वो थोड़े अच्छे पदों तक पहुंच जाएंगे, विश्व महाराजन नहीं, प्रजा में थोड़ा अच्छा पद। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ज्ञान और धारणाओं को छोड़ने के बाद अति भ्रष्ट हो जाते हैं, नॉन वेज खाने लगेंगे, अति विकारी बन जाएंगे, ड्रिंकिंग करने लगेंगे, वो निश्चित रूप से चंडाल पद के अधिकारी।
जी 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 जी, ठीक है। तो वैसे तो आज जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सब राजा रानी, विश्व महाराजा विश्व महारानी है, और वो जो आपने कहा कि जो नीचे वाले हैं वो तो शायद सुन भी नहीं रहे
हैं। नहीं, वो अब नहीं होंगे।
चलिए, तो सभी विश्व महाराजन विश्व महारानियां बड़े उमंग उत्साह से इस सत्र को आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। जी, एक लाइन कही है किसी ने, क्वेश्चन है कि संगम युग पर बाबा कहते हैं जितना अधिक समय परमात्मा दिल तख्त नशीन बनकर रहेंगे उतना ही अधिक समय राज परिवार में आएंगे, तो जो अभी ब्राह्मण बच्चे बन रहे हैं वह बने हैं, वे किस हिसाब से राज परिवार में आएंगे? क्या उनको कम समय मिलेगा राज परिवार में रहने का?
देखिए, ऐसा है, जो अब आ रहे हैं उनका लंबा काल का पुरुषार्थ कैसा है? मान लो कोई एक साल पहले आया, अब उनको एक साल मिला है, एक साल में 365 दिन उन्होंने सुंदर पुरुषार्थ और सुंदर अनुभव किए, किसी ने 2 साल की, ये उनके लिए लंबा काल हो गया उनके हिसाब से, उनके लिए नहीं, वो 50 साल से है या 80 साल से है, ये उनके लिए लंबा काल है। एक तो ये बात, दूसरा परमात्मा आज्ञाकारी। देखिए लौकिक में भी माँ बाप के दिल पे कौन रहता है, जो बच्चे अच्छे हों, लड़ते ना हों, पढ़ाई में बहुत होशियार हों और चरित्रवान हों, बहुत अच्छे आज्ञाकारी हों, कर्मठ हों। ऐसे ही यहाँ भगवान टीचर बनकर आया है, जो उसकी पढ़ाई में आज्ञाकारी है, वो सदगुरु बनकर आया है, वो विश्व का परिवर्तन कर रहा है, उसके साथी बन गए हम सभी। अब साथी कैसे बने, कई साथी विघन डालने वाले हैं, कई साथी निस्वार्थ है, तेरा मेरा है, तो वो भगवान के दिल पे नहीं चढ़ते। दूसरी बात बाबा ने कही, सच्चाई वाले, ईमानदारी वाले और जो बहुत पवित्र हैं, वो तो जैसे भगवान के दिल में ही बैठे हुए हैं, उतरते ही नहीं है दिल में बैठे, अर्थात भगवान उन्हें बहुत प्यार करता है, जैसे वो उसके हो गए। ऐसे लोगों का पद भी बहुत ऊंचा होता है
जी,
और यहाँ भी उन्हें बहुत सुख मिलता है।
बिल्कुल, मतलब कोई कभी भी आए, लेकिन भगवान सबके साथ न्याय करेंगे, ड्रामा सबके साथ न्याय करेगा, और साथ ही लंबे समय तक वो भी राज परिवार में अपने इस लंबे समय के आधार पर।
बात और जोड़ेंगे
जी, जी।
बाबा ने कहा है, जो लंबा काल एक रस स्थिति में रहेंगे वही लंबा काल राज्य अधिकारी बनेंगे। स्थिति बनती है योग से, ज्ञान की धारणाओं से, ज्ञान के चिंतन से। लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज ये भी है, जिन्होंने अपने संस्कारों को रॉयल बना लिया, इसमें प्योरिटीज रॉयल्टी वो तो है ही, लेकिन व्यवहार, बोलचाल, देखना उठना बैठना, ये सब भी रॉयल। अम्मा बाबा थे, मामा थी, चलना भी रॉयल था, लोग देखते रह जाते थे कैसे चल रहे हैं,
देखते रह जाते,
खाना खा रहे हैं तो भी देखते थे बाबा कैसे खा रहे, क्या खा रहा है, ये भी ध्यान से पूछते थे। अभी भी हमसे पूछते थे, बाबा क्या खाता था, अरे भाई यही भोजन खाता था जो यज्ञ में बनता है।
जी।
तो एक हर कर्म में रॉयल्टी,
बिल्कुल,
ये भी हाईएस्ट स्टेटस की पहचान।
बिल्कुल, बाबा की एक बात याद आ गई, ब्रह्मा बाबा के कोई ऐसे थे भाई, जो हम लोग सीढ़ियां जब चढ़ते हैं ना, तो जैसे एक एक सीढ़ी चढ़ना होता है, तो वो दो दो सीढ़ी, तीन तीन सीढ़ी ऐसे जंप करके चढ़ रहे थे। तो बाबा ने कहा, बच्चे ये क्या बंदर मिसल मतलब ये रॉयल्टी नहीं है। कई बार हम इन छोटी छोटी चीजों पे भी ध्यान नहीं देते,
युवक होते हैं, हम लोग जब छोटे थे तो कूद के चढ़ते थे, तो बात तो बाबा ने ठीक कही, बंदर की तरह।
तो मतलब यहाँ भी ये छोटी छोटी चीजें हमारे संस्कार में आ जाएंगे और हमारे ऊंच पद राज परिवार के आधार बनेंगे। ब्रदर जी, बाबा ने कहा है कि जो राज्य की स्थापना अर्थात नई दुनिया की स्थापना जब पूरी होगी, फिर विनाश शुरू होगा। क्या ये नई दुनिया की स्थापना का कार्य शुरू हो चुका है? यदि हाँ तो कहाँ? और जो भी ब्राह्मण आत्मा अभी शरीर छोड़कर जा रहे हैं, तो बाबा भी बार बार कहते हैं कि वो नई दुनिया की स्थापना में अच्छे हैंड बन रहे हैं, तो ये स्थापना का कार्य कहाँ चल रहा है? क्या विनाश के पहले ही स्थापना का
नहीं, कार्य? विनाश से पहले ही स्थापना का कार्य पूर्ण हो लेता है और राजा रानी बनकर तैयार हो जाते हैं। बाबा ने ये बात बहुत बार कही थी, बहुत लोगों को नहीं पता है कि बाप दादा मेहनत करा रहे हैं और तुम भी मेहनत कर रहे हो राजा रानी बनने के लिए। जिस दिन राजा रानी तैयार हो जाएंगे, पड़ जा तो एक एक दिन में भागी चली आएगी। तो इस गुप्त रूप से राज्य स्थापित हो रहा है, राजा तैयार हो रहे हैं और रॉयल फैमिलीज तैयार हो रही हैं, प्रजा भी तैयार हो, क्योंकि जो अच्छे पुरुषार्थ करने वाले वो तो कर ही रहे हैं। लेकिन विनाश के बाद एक नया नजारा हमें दिखाई देगा, और उससे पहले ये जो ब्रह्मा वत्स देह छोड़ रहे हैं, कई सोचते हैं क्यों छोड़ रहे हैं, बाबा इनको मदद क्यों नहीं कर रहा है। देह न छोड़ना ये कोई भगवान की मदद नहीं होती, उसके पास भी तक प्लानिंग है। देवताओं को जन्म देने वाले जा रहे हैं यहाँ से। अब पहले जो आत्माएं गई थी वो सूक्ष्म रूप से जो राज परिवर्तन होगा उसमें मुख्य भूमिका निभाएंगे
जी,
और ये आत्माएं देवताओं को जन्म देंगी। तो एक गुप्त रूप से देवलोक के उदय होने का कार्य बड़ा सूक्ष्म गति से
जी
चल रहा
है। ये तो अंदर की बात हो गई कि चलिए राजा भी तैयार हो रहे हैं या रॉयल फैमिली भी तैयार हो रही है, ये सब तैयार हो रहे हैं, लेकिन वो प्रत्यक्ष में तो दिखाई देगा ना कि हाँ प्रत्यक्ष में भी ऐसा एक माहौल, महल वहल और बहुत सारी चीजें वो भी तो दिखाई देंगी।
अब ये सब दिखाई, ये सब अब होने जा रहा है। पहले होगा जिन्होंने यहाँ बहुत अच्छे अभ्यास किए हैं, अपने जीवन को बहुत महान बनाया है, जैसे बाबा ने कहा जो योग युक्त आत्माएं हैं वो तो मेरे समान हैं। तो जो बाप समान भगवान के समान बन गए, लोगों ने कह दिया भगवान बन जाते हैं, जिन्हें कहा लीन हो जाते, ये दोनों ही बातें गलत हैं, उसके समान बन जाते हैं। मतलब जैसा वो है वैसे ही हम, जो वो है वो हम नहीं, जैसा वो है वैसे ही हम बन जाते हैं। तो जिन्होंने ऐसा अच्छा कुछ सार्थ किया और जो संपूर्ण पावन बन गए पहले होंगे उनसे साक्षात्कार, ये बात हमें याद रखनी चाहिए। बाबा ने कहा है पीछे जब तुम संपूर्ण पावन बन जाओगे तो तुमसे साक्षात्कार होने लगेंगे। तो साक्षात्कार में एक नया रूप दिखाई देगा, एक तो जो कुछ इस धरा पर होगा उससे शिव बाबा हमें ऊपर रखेगा, उसका हमें आभास उसका कष्ट नहीं होने देगा। दूसरा जो आने वाली दुनिया है उसके नजारे एकदम सामने आएंगे, साक्षात्कार होंगे और ये एक आवाज फैलती रहेगी, बस ये खेल खत्म हुआ, ये महाविनाश कल्याणकारी और वो स्वर्णिम युग आ रहा है, जैसे कोई चीज चली आ रही हो वो आ रहा है। तो पहले ये सीन शुरू होंगे और जब ये खेल पूरा समाप्त होगा फिर जो गद्दी पर बैठेंगे वो सत्युग का फिजिकली निर्माण करेंगे।
जी 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 बिल्कुल, मतलब ये जो एक कार्य है अभी सूक्ष्म रूप से हो रहा है, धीरे धीरे उसका जो स्थूल स्वरूप है वो हमें दिखाई देने लगेगा।
पहले साक्षात्कार जी, इसमें होंगी जय जयकार और फिर वो प्रैक्टिकल में आता होगा दिखाई देगा।
बिल्कुल बिल्कुल, चलिए वो जल्दी जल्दी आए
और साथ साथ हाँ ये भी तो सबको पता चल जाएगा कौन कौन है,
राइट,
कौन क्या बनेंगे। तो जो अहम वाले हैं सोचते हम तो बहुत बड़े हैं हम ये हैं, उनको पता चलेगा तुम कितने पानी में हो। और जो गुप्त योगी हैं, जो पवित्र आत्माएं हैं, जो गुप्त सेवाएं कर रहे हैं, उनको भी खुद भी पता चलेगा और संसार को पता चलेगा कि दे आर सो ग्रेट।
तो क्या एक समय, जैसे एक बार रिजल्ट अनाउंस होता है यदि हम फिजिकल वर्ल्ड की बात करें, वैसे ही क्या एक ही ऐसा टाइम होगा जिसमें सबके रिजल्ट अनाउंस होंगे कि ये है?
नहीं, वो एक
अलग अलग क्रम में,
वो एक डेट नहीं होगी, इसका क्रम होगा।
जी जी,
कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, इसमें साल लगेंगे।
बिल्कुल बिल्कुल, और उस प्रत्यक्षता के आधार पे ही फिर आगे का कार्य चलेगा। और वैसे जो बाबा कहते हैं कि अंत समय में जब देह छोड़ने वाले होंगे तब भी अपने पद को देख पाएंगे, साक्षात्कार होगा, क्या ये भी होगा?
ये ऐसा होता है जब कोई मनुष्य देह छोड़ता है, यहाँ भी होता है, तो बहुतों की मेमोरी बिल्कुल क्लीन हो जाती है, उन्हें पिछला सब कुछ याद आने लगता है, तब कई लोग कई तो फ्रेश हो जाते हैं। अब वो समय ऐसा होगा सृष्टि चक्र में कि जब सभी को उनका फ्यूचर रूप दिखाई देने लगेगा, और जो अच्छे पुरुषार्थी हैं जिन्होंने बहुत अच्छी योग साधनाएं की, बहुत पुण्य आत्मा रहे हैं, पापों को नष्ट कर लिया है, पावन बन गए, उनके सामने वो आने लगेगा, बस ये छोड़ा ये बने।
तब तो आनंद से फिर छोड़ेंगे, कोई कष्ट नहीं होगा। प्रश्न है बेटा जी कि बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे अभी ब्रह्मा बाप के साथ विश्व शांति की स्थापना का कार्य कर रहे हो, और सारी दुनिया में भी ये बात प्रचलित है कि ब्रह्मा कुमारी शांति के लिए कार्य कर रही हैं। तो इसके साथ एक प्रश्न आता है कि जब आप शांति के लिए कार्य कर रहे हो तो चारों ओर विश्व में इतनी अशांति क्यों फैल रही है? लोग ये पूछते भी हैं, तो उन्हें क्या जवाब दिया जाए?
देखिए, अशांति फैलने का दूसरा कारण है, उसके कारण उस ब्रह्मा कुमारी का नहीं है। कुछ ब्रह्मा कुमारी तो शांति स्थापित कर रही, फिर भी अशांति हो रही। अभी जब मनुष्य देहभान में है, जब मनुष्य पाप कर्म कर रहा है, जब वो विषय विकारों में एकदम डूबा हुआ है, जब उसका जीवन काम ही काम, धन ही धन, स्वार्थ ही स्वार्थ, वो किसी को धोखा दे रहा है, किसी का रेप कर रहा है, किसी को मार रहा है, तो भला वो शांत कैसे होंगे? इसलिए अब ये होगा, जैसे जैसे इधर योगी जन शांति की गहन तपस्या करेंगे, उनके शांति के वाइब्रेशंस फैलते जाएंगे। इसके दो इफेक्ट दिखाई देंगे, ये जो अशांति पैदा करने वाले हैं, ये जो अति पाप कर रहे हैं लोग, उनका मन और अशांत होगा, क्योंकि उनको अपने कर्मों की रियलाइजेशन होगी और वो फिर पश्चाताप करेंगे, और पश्चाताप करके वो आत्माएं शांत होंगी, ये गति चलेगी उनके साथ। क्योंकि जब तक मनुष्य ने अपने पापों को रियलाइज नहीं किया, क्षमा याचना नहीं की, पश्चाताप नहीं किया, तब तक वो उनसे मुक्त नहीं हो पाता। तब ये ब्रह्मा कुमारी होगी, शांति सारे संसार को शांत कर देगी। तो सृष्टि पर एक ऐसा समय आ जाएगा बहुत जल्दी जब यहाँ डीप साइलेंस हो जाएगी।
तो क्या अभी ऐसा नहीं है कि थोड़ी कमी हमारी ओर से भी है कि ये वाइब्रेशन उतनी ज्यादा उन्हें प्रभावित नहीं कर रहे हैं और वो अपनी बुराइयों को गंदगी को नहीं छोड़ रहे हैं?
बिल्कुल है, सबकी है, हमें इसको एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सभी योगी सदा योगी नहीं है, उनके अपने संस्कार हैं। कभी कभी किसी बुरी चीज के कारण उनकी शांति भी अल्पकाल के लिए खत्म होती है, वो भी टेंशन में आ जाते हैं। तो जो शांति फैलने का एक समय है वो उसमें चला जाता है, लेकिन जो लोग अमृत वेले उठकर योग लगाते हैं, जो नुआ शाम इस समय जिसके लिए प्रसिद्ध है, देवताएं भी विचरण करते हैं, दोनों समय जो डीप साइलेंस का अभ्यास करते हैं, योग युक्त होने का अभ्यास करते हैं, वो निश्चित रूप से संसार में शांति फैला रहे हैं। और जो थोड़ी भी पुण्यात्माएं हैं ना, उनके चित्त शांत और पवित्र होते जाते हैं, ये भी हम देख रहे हैं। लोग रियलाइजेशन में आ रहे हैं, अपनी गलतियों को कन्फेस करते जा रहे हैं। तो बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही, जितना जितना तुम दया से न्यारे होने का अभ्यास करते हो, माना तुम संसार को शांति का दान देते हो। तो हम में से जो भी ये काम कर रहे हैं वो संसार में शांति स्थापना का बड़ा कार्य कर रहे हैं।
जी जी जी, सभी तो कर रहे हैं और भी ज्यादा इसे करने की आवश्यकता है ताकि लोग उस शांति को महसूस कर सकें। अब रता जी, जय जयकार वाली बात तो ही मैं आपसे पहले कह रहा था कि हाहाकार वाली भी बात है। तो बाबा कहते हैं कि दुखों के पहाड़ टूटने हैं, गिरने हैं, ये भी बाबा शब्द कहते हैं। तो ईश्वर उवाच है तो फिर वो तो होना ही है। अब कुछ परिस्थितियां इन्होंने भेजी हैं, ये कहते हैं यदि ऐसी परिस्थिति हो तो हम क्या करें। कुछ परिस्थितियां हम आपसे भी सुनेंगे। मान लीजिए मैं अकेली या अकेला हूं और कोई महाविकारी व्यक्ति मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है, मुझे क्या करना होगा?
होता है, प्रैक्टिकल है। बाबा ने उत्तर दिया, अगर तुम योगयुक्त होंगे, बाबा से कंबाइंड होंगे, तो जैसे ही तुम उस पर दृष्टि डालेंगे उसकी विकारी वृत्ति नष्ट हो जाएंगे। या जो बहुत ज्यादा अभ्यास करेंगे बहने में इस देवी हूं, तो सामने आते ही उसको तुमसे इस देवी का साक्षात्कार होगा और वो नमन करके सब कुछ समर्पित करके वापिस चले जाएंगे। ये बात होगी। अब ये खेल बहुत चलने वाला है, क्योंकि गंदगी से तो संसार अति अति भरपूर है। लोग अति विकारी होते जाते हैं, अति क्रिमिनल क्रूअल होते जा रहे हैं, जैसे अच्छे लोगों का अस्तित्व लोप सा होता जा रहा है, एकदम धरा पर ऐसे पापियों का या असुरी संपदा का जैसे दबदबा बनता जा रहा है। सरकारें भी क्या करें, देखो पुलिस बहुत कुछ करती है लेकिन बढ़ता ही जा रहा है। तो ये सब तो आगे होना ही है।
जी, जी, जी।
पर हमें अपनी योग युक्त स्थिति से, मैं सदैव बाबा की एक बात याद दिलाता हूँ, हमारी प्योरिटी हमारी स्वयं सुरक्षा करेगी। यदि हम एक बात छोटी सी याद रखेंगे, भगवान हमारा साथी है, और ऐसी कुछ घटना होते ही हम बस आ जाओ बाबा आ जाओ, खेल ही बदल।
बिल्कुल, मतलब लेकिन स्मृति हमारी वो होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन है व्रत जी जहाँ व्यक्ति घबरा सकता है, हड़बड़ा सकता है, और यदि मेरी स्मृति कहीं ऊपर नीचे होती है तो फिर स्थिति कुछ और हो सकती है।
इसमें हमारी बहनों को विशेष रूप से निर्भय होना चाहिए। हैं, हमें बताती हैं बहनें, निर्भय हैं। बॉम्बे में एक घर में चोर आ गए, अभी ये पहुंच गए, परिवार पहुंच गया, तीन चोर थे, निकल के भागे, इस बहन ने एक का थैला ही छीन लिया।
अच्छा,
उसमें सारे माल
चोर से भी ले लिया।
माल भरा हुआ था, छीन लिया उसने। अब वो घबरा इतना गया था कि उसके हाथ कांप रहे थे, पट से छूट गया।
तो इन्हीं का माल था
इन्हीं का,
किसी और के घर के
ना, और के घर की चोरी नहीं थी, इन्हीं के घर की चोरी थी। वो कभी कभी इनके घर काम करने आते थे, कारपेंटर से।
जी जी।
तो वही आ गए थे, देखा इनका बड़ा घर है बॉम्बे में, इतना बड़ा घर, ये दो तीन फ्लैट का नहीं, एक सुंदर बड़ा घर।
जी।
तो आ गए, वो मुझे बताते, और फिर ऐसा इन्होंने अच्छा अभ्यास किया योग का कि वो पकड़े गए और सारी जो इनकी चोरी हुई थी सब वापस आ गए।
जी, मतलब स्थिति की बात है। वैसे व्रता जी, जो अंत हाहाकार वाली मैं बात कर रहा हूँ, तो सिचुएशन कि मान लीजिए चारों तरफ बाढ़ का पानी है, मैं पेड़ पे या छत पे अकेला, मौत सामने दिखाई दे रहा है,
सीन बना ले।
मतलब ये सारी सिचुएशन,
हम पेड़ पे चढ़ गए लेकिन एक सांप भी बैठा है डरा हुआ वहीं। ये हुआ था पीछे सीन। सांप भी बैठा है और ये भी
मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं है, तो मेरी स्थिति मतलब कैसी हो, क्या संकल्प, क्योंकि मौत सामने है और मैं देख रहा हूँ कि सब कुछ जाना है स्थिति।
अगर किसी व्यक्ति ने लंबा काल देह से न्यारे होने का अभ्यास किया होगा, जिसको जीते जी मरना कहते हैं, तो मौत से घबराएंगे नहीं। बाबा का वो महावाक्य फिर याद दिला दूं, यदि तुम बार बार शरीरी होने का अभ्यास करेंगे तो विनाश काल में तुम्हारा विनाश नहीं होगा, इच्छा मृत्यु का वरदान तुम्हें प्राप्त रहेगा। तो जिन्होंने अच्छे अभ्यास किए उनको ये सिचुएशन आएगी नहीं। दूसरी बात, जिन्होंने योग बल से प्रकृति को वाइब्रेशंस दिए हैं, प्रकृति उन्हें मदद करेगी। मान लो पेड़ पे बैठे भी हैं, पानी धीरे धीरे उठ जाएगा या कोई उनको बचाने आ जाएगा। ये सब होगा, आजकल भी तो होता है
जी जी,
रेस्क्यू टीम बहुत चलती है, सरकारें बहुत प्रबंध करती हैं और कोई बचाने आ जाते हैं। फिर भी मान लो उन्हें लगता है कोई नहीं आ रहा है, प्यास लग रही, भूख लग रही, हाथ भी कमजोर हो गए, अब छूटे और गिरे
जी।
तो थोड़ा बाबा को याद कर लें, शिव बाबा को उनका आह्वान कर लें और बाबा को सौंप दें अपना जीवन, थोड़े हल्के हो जाएं, तो हो सकता है बाबा पलकों में छुपा के ले जाए, पता भी न चलने दे क्या हुआ।
बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये स्थिति हो तो बहुत सुंदर है। एक स्थिति और भी रहता जी कि जैसे सिविल वॉर है, मोह वाली बात जो आती है, अब मैं देखता हूँ कि मेरे परिवार मेरे बच्चों के सामने ही कुछ उनका विकारी व्यवहार हो रहा है या बेरहमी से उन्हें मारा जा रहा है, यद्यपि बाबा के बच्चों के साथ नहीं, फिर भी कुछ स्थितियां उन्होंने लिखी है कि यदि ऐसा है मन कैसे। बिल्कुल ही
बिल्कुल होता है, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुए तब ये सीन लोगों ने बहुत देखे
जी, और शायद यही तो पहाड़ है दुखों के,
दुखों के पहाड़ यही है
जी,
क्योंकि इन चीजों का मानसिक इफेक्ट बहुत होता है। अब कोई बच्चों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा हो, मनुष्य को बहुत गुस्सा आता है पर वो वहाँ कुछ कर नहीं पाता है, उधर वाले लोग 50 हैं, ये 2 हैं, कुछ कर नहीं सकता है। ऐसे में वास्तव में तो अगर हमारी मनो स्थिति बहुत अच्छी होगी तो हमें मदद मिल जाएगी। मान लो ऐसा कुछ हो रहा है और हमारी मनो स्थिति बहुत अच्छी है, फट से मिलिट्री आ गई है, गोलियां चलने लगी पीछे से और ये सब भाग गए, ये सिचुएशन भी आ जाएगी। और यदि हमने शिव बाबा का हाथ पूरी तरह से पकड़ा है तो जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, हमें ऐसी परिस्थितियों का सामना नहीं करना होगा, लेकिन हमें अब अपने को समय देना चाहिए। ये समय बहुत सुंदर चल रहा है, बहुत लोग इस समय की ब्यूटी को समझ नहीं पा रहे हैं कि हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा करेंगे तो शिव बाबा की इतनी मदद होगी कि ऐसा लगेगा हम उसकी छत्र छाया में रह रहे हैं, हमें इन परिस्थितियों से गुजरना ही नहीं पड़ेगा, हम सेफ रहेंगे। जिसका बाबा उदाहरण देते थे, देखो मैं 2 बातें याद दिलाता हूँ, तो बिल्ली के बच्चों का उदाहरण देते, बाबा अपने बच्चों को सेफ रखेगा। दूसरा 73 की बात है, अब एक बाबा आए थे, उन्होंने पूछा था कि विनाश होने लगे और भोजन न मिले, पानी न मिले, तुम सब क्या करोगे। तो लोगों ने अच्छे अच्छे उत्तर दिए थे, लेकिन बाबा ने फिर उत्तर दिया, जिनके पास अष्ट शक्तियां होंगी उन्हें सब कुछ प्राप्त होगा, और जितनी जितनी शक्तियां कमी उतनी उतनी कमी, जितनी जितनी शक्तियों की कमी उतनी फिजिकली यहां कोई कमी। जिनके पास सारी शक्तियां अर्थात जो योग युक्त हैं, जो मास्टर ऑलमाइटी बन गए, अभी कर्फ्यू लगा हुआ है, सब्जी चाहिए, आटा नहीं है घर में, अनाउंस होगा 2 घंटे के लिए कर्फ्यू खुल गया है, इसको जो लाना है जल्दी ले आओ, दूध भी ले आओ, ऐसा होगा।
और कोई घर में दे के भी जा सकते,
दे के जाते हैं हमारे सेंटर में, ऐसे ऐसे कुमार थे, पुलिस खड़ी है, पुलिस को कहा रे भाई जी आश्रम में दूध की थैली फट से डाल दो, फेंका के यार आ गए, पुलिस वाले ने भी सहयोग दिया, कोई सब्जी फेंक के आ गया, ये होता रहा, कई सेंटरों में ऐसे हुआ है। तो किसी न किस तरह से मदद
मिल जाती है, मतलब हमें अष्ट शक्तियों को अच्छे से अपने अंदर धारण करना होगा, हम चेक कर लें अपने आप को कि कितनी धारणा है, क्योंकि अंत समय में यही कार्य आने वाला है। अब मेहता जी आपने एक बात कही कि चलो सब कुछ बाबा के साथ याद में सब कुछ अच्छा होगा, और ये हम सबको निश्चय है कि कुछ भी बुरा नहीं होने वाला है, लेकिन बाबा का ही महावाक्य है कि भीलों ने पांडवों को लूटा, ये भी कहा गया है, तो इसका क्या भाव है?
वो महाभारत की कहानी है ना कि अर्जुन उसमें लोभ आ गया, श्रीकृष्ण के पास पहुंचा, थी, आपके पास बहुत धन संपदा है, द्वारका सोने की है, थोड़ा हमें भी दे दो, रथ लेकर गया था गई, ठीक है, उसके रथ भरवा दिए, जाओ। और दिखाया आबू के पास ही, भीलों ने लूट लिया उसे। तो हमारे यहाँ लौकिक में तो ये गीत चलते थे, लोग गीत गाते रहते थे, भीलों ने लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। तो क्यों हुआ ये? क्योंकि उससे भगवान की छाया हट गई, उसको लोभ हो गया धन में। पहले उनको था भगवान हमारे साथ है, तो उसकी शक्तियां उनके साथ काम कर रही थी, तभी तो भीम को महसूस हुआ था बल ही नहीं रहा। 60,000 हाथियों के बल वाला कहता बल खत्म हो गया मेरा, कहाँ गया वो ईश्वरीय बल था। युधिष्ठिर कहने लगा धर्म की सत्ता कहाँ गई, लोप होती नजर आ रही, क्योंकि वो बस यही यहाँ है, अगर ईश्वरीय छत्र छाया में हम होंगे तो ये परिस्थिति नहीं आएंगी। हम आ गया बारे में तो
भ्राता जी, हम सभी योग करते हैं दुनिया को बदलने के लिए, खुद को सतोप्रधान बनाने के लिए, प्रकृति को पावन करने के लिए आदि। ये सब होगा विनाश के द्वारा, जो किसी भी रूप में होगा, फिर चाहे कोरोना हो, फ्लड हो, भूकंप हो या वर्ल्ड वॉर हो। फिर जब ये सब होने लगता है तो हम उसकी शांति के लिए योग करते हैं कि ये बंद हो जाए। जैसे आजकल कई लोग कोरोना को खत्म करने के लिए योग कर रहे हैं कि कोरोना खत्म हो, उसके लिए सकाश दे रहे हैं। तो क्या ये विरोधाभास नहीं हुआ, पहले योग करो कि विनाश हो, फिर जब विनाश शुरू हो तो उसके बाद शांति के लिए योग करो?
हम योग इसलिए नहीं कर रहे कि विनाश हो, ये सोचना गलत है। योग के वाइब्रेशन से ये ऑटोमेटिकली प्योरिटी जागृत होती है तो इम्प्योरिटी नष्ट होती है। जैसे प्रकृति की जो मूल शक्ति है वो प्योरिटी है, अभी मनुष्य ने उसमें इम्प्योरिटी भर दी, तांसिकता। अब हम फिर से प्योर वाइब्रेशंस उसको दे रहे हैं, तो प्योर वाइब्रेशंस और इम्प्योर वाइब्रेशंस का टक्कर होता है, ये होगा अर्थक्वेक्स, प्राकृतिक प्रकोप का असली कारण ये होगा। तो जो गंदगी है वो बाहर निकलेगी, तो हम तो प्योर वाइब्रेशंस देंगे। ऐसे ही परमात्मा की ओर आप देखें, वो एक और विनाश का कार्य भी कराता है, लेकिन एक दूसरी ओर वो दुख हटता भी है, वो सबका सहारा भी है, वो सबका मददगार भी है, विनाश काल में भी वो बहुतों को मदद भी करेगा। तो दोनों कार्य, हम ये नहीं कह सकते कि भगवान का कार्य विनाश का है तो वो मनुष्यों को मदद क्यों कर रहा है। ऐसे ही हमारे भी कार्य हैं, विनाश का कार्य ऑटोमेटिकली विधि के विधान अनुसार होगा। एक्चुअली तो इसमें किसी का कोई और रोल नहीं होता, ये तो मनुष्य की गलतियों से होगा। अब वर्ल्ड वॉर कोई भगवान थोड़ा ही कराएगा, हम देखते रहेंगे, वो इन पॉलिटिशियंस की अपनी गलती, अपने अहम, अपने ईगो, अपना स्वार्थ, कुछ उनकी अपनी, कोई अपने तख्त को बचाना चाहेगा, कोई कुछ करेगा, उसके कारण होगा, ये हम सब देखेंगे। इसमें भगवान करा रहा है बिल्कुल नहीं। प्राकृतिक प्रकोप, अब भले ही ये लोग इसको ईश्वरीय आपदा कहते हैं, परंतु नहीं, मनुष्य ने प्रकृति का विध्वंस किया है, उसको तामसिक बनाया है, उसको नष्ट किया है। तो वैज्ञानिक भी कहते हैं कि प्रकृति कुपित है, बदला लेगी, तो बदला लेगी। इसमें भगवान का या हमारा कोई रोल नहीं है, हमारा रोल वही है कि फिर से शांत करना, जो खेल बिगड़ा हुआ है उसको ठीक करना, जो दुखी हैं उनको अच्छे वाइब्रेशंस देकर सुखी बनाना। मान लो तेज तूफान चलने लगा है, हवाएं 250 किलोमीटर की स्पीड से चल रही, पेड़ उखड़ रहे, खंभे उखड़ गए, सागर की लहरें 100-200 फुट ऊपर उठ गई हैं, अब दिखने लगा कुछ भी नहीं बचेगा, चारों ओर पानी पानी हो गया, हाहाकार हो गया, तो जो महानी होगी, जिनके अंदर बहुत प्रेम दया भाव रहम भाव कल्याण का भाव भी है, वो अपने योग बल से प्रकृति को कुछ समय के लिए शांत करेंगे, अन्यथा सब कुछ नष्ट हो जाएगा, धरा ही नष्ट हो जाएगी, मानव जीरो हो जाएगा इस धरा पर, तो वो तो होना नहीं है। तो दोनों कार्य चलेंगे, हम अपना काम करेंगे, विनाशकारी अपना काम करेंगे, प्रकृति अपना काम करेगी।
जी जी, मतलब एक भाव इनका ये भी था प्रत्यय जी कि जैसे क्या ऐसे समय पे हम साक्षी होकर अपना नॉर्मल योग ना करें, ठीक है दुख अशांत में है लोग तो उनको शांति और प्योरिटी के दान दें, पर इस पर इस प्रकार के संकल्प कि ये खत्म हो रहा है या फिर ये जो बहुत ज्यादा आपदा विपदा आ रही है वो समाप्त हो रही है, वो कार्य तो होना है तभी तो परिवर्तन होगा।
वो तो होना ही है, लेकिन साक्षी भाव का अर्थ होता है उसका इफेक्ट हमारे मन पर न पड़े, लेकिन साक्षी भाव के साथ हमें अपने कर्तव्य भाव में भी रहना है। हमारे कुछ कर्तव्य भी होंगे, मान लो किसी परिवार में माँ बाप के बच्चे ही बहने लगे, वो साक्षी तो नहीं होगा ना, वो उनको पकड़ के बचाएगा भी। ऐसे ही सारे संसार के लिए हमें भी करना है, तो शांति के वाइब्रेशंस भी फैलाएंगे, अपने लिए भी योग करेंगे, बाबा की मदद भी लेंगे, और जो हमारे कर्तव्य हैं, जो अभी से क्या बहुत पहले से जो बाबा ने हमारे अंदर कूट कूट कर भर दिए हैं कि क्या तुम्हें भक्तों की पुकार नहीं सुनाई देती, क्या तुम उनके दुख हरने वाले नहीं हो, तुम ही तो उनके मास्टर रक्षक हो, तुम्हारे लोग नष्ट होने लगे तो मास्टर रक्षक तो वो हम हैं उनके, वो हमारी ओर तो देखेंगे। तो हमें दोनों काम करने, साक्षी भी रहना अपने लिए लेकिन दूसरों के लिए अपनी
मदद करना है। आपने जैसे परिवार की बात कही कि हम अपने परिवार लोगों को बहता हुआ देखेंगे तो उन्हें तो जरूर बचाएंगे, तो अब एक बात आती है कि मान लो संसार में हमारी चारों तरफ लोगों में आपदा विपदा से ग्रस्त हैं, त्राही त्राही कर रहे हैं, ऐसे में हम फिजिकली जाकर उन्हें मदद करें या योग के माध्यम से मदद प्रदान करें, एक दुविधा की स्थिति होती है।
दोनों चीजें करनी है। देखिए सरकारें बहुत काम करेंगी और करती हैं, मिलिट्री पुलिस और बहुत सारे जनप्रतिनिधि सब लोग काम करते हैं। अच्छा अगर हम फिजिकली किसी को मदद कर सकते हैं, एक व्यक्ति के ऊपर कुछ गिर गया हम उसे निकाल सकते हैं, उसको हटा सकते हैं, स्कूटर से ही कोई गिर गया स्कूटर को हम हटा सकते हैं, तो हमें हटा देना चाहिए।
ये तो एक की बात हो गई।
हाँ नहीं वैसे ही तो हम भी महाविनाश में जो बेस्ट पॉसिबल होगा फिजिकली करना वही तो करेंगे ना। सारे संसार के लिए तो कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन बाकी जितना हम योगयुक्त रहेंगे हमारे वाइब्रेशंस दूसरों को मदद करेंगे। मैं एक बात सदा कहता आया हूँ, मान लो एक मल्टी स्टोरी गिर जाती है, उसमें हजार लोग रहते थे, वो दब गए, सब तो मरेंगे नहीं, कोई दबा चिल्लाया परेशान है, कोई तो मृत्यु का इंतजार करेगा, कोई वहां तक पहुंचेगा नहीं, तो उस टाइम हमारे योग के वाइब्रेशन से उनके लिए सबसे बड़ी मदद होगी, मुकाबले बस इसके कि फिजिकली हम भी जाएं, वो संभव नहीं होगा तब। तो हमारे योग के वाइब्रेशन उन्हें देह से मुक्त करेंगे, पीड़ाओं से मुक्त करेंगे, उनकी इच्छाओं को समाप्त करेंगे, उनके चित्त को शांत करेंगे, ये बड़ी सेवा होगी।
बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये कार्य हम जरूर करें और जहां संभव हो जैसे आपने कहा वो मदद जरूर हो। पता जी कई बार हमारी जो सीनियर्स हैं वो विनाश की वर्ष की घोषणा कर देते हैं, कृष्ण के जन्म की घोषणा कर देते हैं और वैसा होता नहीं, तो इसका फायदा बाहर वाले एंटी पार्टी वाले लेते हैं, वो वीडियोस प्रूफ दिखाते हैं कि देखो आपके फलाने भाई ने या बहन ने ये कहा ये तो हुआ नहीं, तो आप लोग तो ऐसे ही ठगी वाली बात करते हो, तो इससे कई जो कच्चे बच्चे हैं वो टूट जाते हैं, संस्था का नाम भी खराब होता है, कईयों के मन में संशय भी आता है। तो क्या ऐसे विनाश की डेट या फिर किसी कृष्ण के आने आदि की डेट इसकी घोषणा की जानी चाहिए, क्योंकि बाबा ने तो ऐसा कुछ कहा नहीं है?
देखिए बाबा ने मुरलियों में बहुत कुछ कहा है, उसके आधार से लोग गैस करते हैं, बहुत कुछ कहा है, लेकिन बाबा भी कोई फिक्स डेट तो कभी बताते नहीं है, वो हम लोगों का अंदाज होता है। जैसे आप 2000 की बात सोचो, मिलेनियम की बात बहुत चले, हम तो बोल ही नहीं रहे थे, वैज्ञानिक और बाहर के लोग जो भविष्य दृष्टा है या ज्योतिषी है वो बोल रहे थे सब कुछ नष्ट हो जाएगा, ग्रह मिल रहे हैं, आठों ग्रह एक लाइन में आ रहे हैं, तो नहीं होता, उसके पीछे कुछ कारण होते हैं, उसमें संशय आदि की बात नहीं होनी चाहिए, पर राज ये है स्थापना का कार्य पूरा होने पर ही विनाश होगा। जहां तक श्री कृष्ण के आने की बात है, अभी ब्रह्मा के 100 साल पूरा होने के बाद ये आत्मा परम धाम जाएगी, फिर लौट के आएगी, तब श्री कृष्ण का जन्म होगा, उससे आगे पीछे नहीं, चाहे वो किसी ने भी कह दिया हो। तब के वो हमारे गैस अलग होते थे, जो थोड़े बहुत ईश्वरीय इशारे मिलते
कि ये मंत्र सुनो या इस मंत्र का पाठ करो या घर में ये बजता रहे, तो क्या ये भक्ति मार्ग में नहीं है? क्योंकि बाबा ने तो हमें केवल मन मना भव का मंत्र दिया है, क्या हम किसी और को भक्ति मार्ग वाले मंत्र दें?
है, कहीं ओम की ध्वनि लोग चलाते हैं,
वो तो हमारे संस्था में भी चलता है,
मृत्युंजय महा मृत्युंजय मंत्र चलाते हैं
जी।
अब ये क्या है कि अगर योग मोस्ट पावरफुल है तो योग के वाइब्रेशन से ये सब काम कर देते हैं, लेकिन जहां नहीं होता और बैड एनर्जी फैली रहती है तो ये मंत्र थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं। बाकी मंत्र जाप आदि ज्ञान मार्ग का विषय नहीं है, ये भक्ति मार्ग का ही विषय है, लेकिन कुछ लोग थोड़ी थोड़ी भक्ति की भी मदद लेते रहते हैं। मैं सोचता हूँ इसमें कुछ बुराई तो नहीं है, गंदगी देखें, गंदगी की पिक्चर रखें या गीत सुने, उससे तो अच्छा ओम की ध्वनि बज रही है या ओम नमो शिवाय बज रहा है, उससे वाइब्रेशंस में तरंगे थोड़ी अच्छी फैलती है, नुकसान कुछ नहीं है। लेकिन अगर हमारा योग मोस्ट पावरफुल है फिर किसी चीज की जरूरत नहीं रहती।
बिल्कुल, मतलब इस समय को देखते हुए, लोगों को देखते हुए ये बातें कही जाती हैं कि मान लीजिए उनसे योग नहीं हो रहा है तो ये सहज तरीके हैं कि चलो एक मंत्र को उच्चारण कर लो या वही बजा लो, तो वो भी एक वातावरण बनाने में उन्हें मदद करता है। मतलब व्यक्ति परिस्थिति देख करके ये बात कही गई है, इसे अन्यथा ना लिया जाए। बाबा कहते आए हैं कि बच्चे अंत अंत तक बाबा तुमसे मिलते रहेंगे, साथ रहेंगे, ये बात बाबा ने कही है, लेकिन अब तो बाबा नहीं मिल रहे हैं।
बाबा तो मिल रहे हैं, ये सोचना ही गलत है, पहले से भी अच्छी तरह मिल रहे हैं। अभी देखिए, बहुत लोग थे जो बाबा से मिलते मिलते दूर चले गए, जब मिल रहे थे तभी संशय आ गया, संशय बाबा में नहीं आया, अपनी प्योरिटी में आ गया, प्योर हो गए, छोड़ गए भगवान को। अब तो और अच्छे अनुभव करा रहा है बाबा, और किसी की भी ये शिकायत नहीं है जो अच्छे पुरुषार्थी हैं कि योग अभ्यास में उन्हें प्रभु मिलन का अनुभव नहीं होता, सबको हो रहा है। फिजिकल मिलन सदा नहीं हो सकता, मिलन की विधियां हम बदलते देखते आए हैं पूरे संगम युग पर, चार पांच विधि परिवर्तित हुई है, अब भी ये विधि परिवर्तित हुई क्योंकि बाबा ने देखा अब इस मेरे आने से और वही एक रूटीन चलते रहने से कुछ ज्यादा उन्नति सबकी नहीं हो रही है, इसलिए उसको स्थापना की गति को फास्ट कराना है, तो उसने ये इसके कार्य की विधि को बदल दिया है। अब कोई सोचे बाबा आएगा या फलानी जगह आ रहा, कई कह देते ना मेरे में आ रहा तेरे में, कई जगह आता रहता है, वो तो सब धोखा है, तो वो नहीं। अब योग युक्त होकर वतन में जाकर हम प्रभु मिलन का आनंद लें तो उससे भी ज्यादा आनंद आएगा जो तब आता था। और मैं ये भी साफ बता देता हूँ, अगर हमारे यहाँ 25,000 लोग आए हैं बाबा से मिलने के लिए, उसमें 10,000 को तो बस अच्छा अच्छा कहने के बजाय कुछ नहीं होता था, 50-60% आत्माएं बहुत अच्छा अनुभव करती थी, बाकी तो देखने वाले होते थे, मेला चल रहा है, वाह बाबा आ गया, मजा आ गया, बस इतने तक ही होता था।
जी 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 जी, प्रश्न तो और कहीं रहते जी, लेकिन वक्त हो रहा है, अंततः मैं चाहूंगा कि आपकी जो प्रेरणा है, समय जैसे आप हमेशा कहते हैं बहुत सुंदर चल रहा है, मन में जिज्ञासा के ही प्रश्न है, ये संशय के तो नहीं है, बहुत कम संशय के होंगे, बस एक क्लैरिटी मिलती है तो सभी उस ओर और दृढ़ता से बढ़ते हैं। अब क्या पुरुषार्थ करें, समय क्या मांग कर रहा है?
शरीरी होने की बार बार प्रैक्टिस करेंगे, अपने स्वमान को बढ़ाते चलेंगे, इस पे बहुत ध्यान देना, अमृत वेला कभी मिस ना करें, और बहुत अच्छे मिलन के अनुभव करें, सुस्ती वाले नहीं, रूटीन नहीं कि बस आत्मा समझ बाबा को याद कर लो, इससे कुछ ज्यादा नहीं होता है, भिन्न भिन्न तरह से जिसको बाबा कहते मनोरंजक रूप से योग का अभ्यास करो, सारा दिन भी कोई ना कोई अभ्यास चलता रहे। मैं एक सरल शब्द यूज करूंगा, किसी न किसी तरह से हम बाबा से जुड़े रहे, फिर बाबा से बात करते रहे, बाबा ये काम कर रहे हैं आप भी आ जाओ हमारे साथ, भोजन कर रहे हैं आओ खाओ, पानी पीता हूँ आप पिलाओ मुझे, एक सिंपल इसको मनोरंजन बना दे, इसकी बहुत जरूरत है। मुझे अपने मोह को नष्ट करते चले, बहुत बड़ी चीज है, मोह का पेपर ही सबसे बड़ा होगा, और जो कुछ होने जा रहा है उसको स्वीकार करें, अपने को तैयार करें, बाबा का हाथ इतनी मजबूती से पकड़ लें कि माया या प्रकृति के तूफान उसको छुड़ा न सके। योग का चार्ट हर एक का 4 घंटे से अधिक होना ही चाहिए, तभी ईश्वरीय जीवन का सुख मिलेगा, तो ये यात्रा आनंदकारी हो जाएगी।
जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर जी। सचमुच आज इस प्रश्नोत्तरी सत्र से बहुत सारे लोगों के प्रश्नों को एक सुंदर न्याय मिला है, समाधान मिला है, और सभी अच्छे पुरुषार्थ की ओर निश्चित रूप से बढ़ेंगे। आपका दिल से सभी भाई बहनों की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया। हम सभी जानते हैं कि जो भी होना है अच्छे से अच्छा होना है। ज्ञान तो हम सबके अंदर भरपूर है। प्रथम दिन से ही बाबा ने कह दिया ड्रामा कल्याणकारी है, बाबा कल्याणकारी है, युग कल्याणकारी है, और तुम स्वयं भी सबका कल्याण करने वाले हो, कल्याणकारी पिता के बच्चे हो, तो अकल्याण का तो कोई प्रश्न है ही नहीं। हाँ, अकल्याण दिखाई देता है, लेकिन उस पर्दे के पीछे बहुत बड़े बड़े कल्याण छिपे होते हैं। जो दृष्टि अब हमें प्राप्त हो गई है, बस उस दृष्टि को हमें यूज करना है। साथ ही साथ समय, जैसे भ्राता जी कह रहे थे, बहुत बहुत सुंदर चल रहा है। अब तो अपने सभी व्यर्थ के द्वार बंद करके हम एक की लग्न में मग्न हों, और एक जो सुंदर समय आने वाला है, हाहाकार भले दुनिया के लिए हो, जिसे बाबा कहते हैं मिरुआ मौत मलुका शिकार, तो दुनिया के लिए, क्योंकि वो भी उनके हिसाब किताब को क्लियर करने की एक प्रक्रिया होगी, लेकिन हम सब ईश्वर के बच्चे, विश्व कल्याणकारी के बच्चे, अपने श्रेष्ठ कर्तव्य को करें, उसके लिए हम तैयारी करें। ये समय हमें मिला है, और साथ ही जय जयकार का जो सुंदर स्वरूप सामने आने वाला है, जिसमें बाबा की भी प्रत्यक्षता और हम सब इष्ट देव देवियों की भी प्रत्यक्षता, वो नजारा कितना सुंदर होगा, जबकि चारों तरफ से यही है, यही है, यही है कि आवाज गूंजेगी। हर जगह शिव ध्वज लहराता हुआ दिखाई देगा, दिलों में लहराता हुआ दिखाई देगा। ये नजारा कितना प्यारा होगा, क्यों ना उसकी ओर बढ़े सुंदर पुरुषार्थ से, और साथ ही साथ अपने आप को समर्पित करते हुए दिल से। कोई भी अपनी कमी कमजोरियां हैं बाबा को दिया, और जैसे भाई सब कह रहे थे कि बस बाबा को यूज करते चले, कि बाबा आ जाओ, साथ साथ रहो, यही बाहर है दुनिया को भूल जाने की। फिर तो बाबा ऊपर रहेंगे, हम नीचे रहेंगे, क्यों ना अब साथ साथ रहें और इस संगम युग का भरपूर आनंद लें। तो चलिए, प्यारे बाबा को साथ रखते हुए, उन्हें शुक्रिया अदा करते हुए आज के सुंदर सत्र को संपन्न करते हैं। ओम शांति।